તારીખ 22/3/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 674 અને 702 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 114
किस प्रकार के योग्यता वाला जीव ज्ञानी या वितराग को पहचान सकता है वो बात चली, उस पर थोड़ा और स्पष्टीकरण देते हैं। जगतवासी अर्थात जो जगत दृष्टि जीव है, जगतवासी माने जो जगत दृष्टि जीव है, यानी मतलब जिसकी लौकिक दृष्टि है, ऐसे जीव, उनकी दृष्टि से ज्ञानी या वितराग की सच्ची पहचान कहाँ से हो, उनको तो ज्ञानी को पहचान सकेंगे नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि ही दूसरी तरह की है। दृष्टांत देते हैं कि जिस तरह अंधकार में पड़े हुए पदार्थ को मनुष्य चक्षु देख नहीं सकते, उसी तरह देह में रहे हुए ज्ञानी या वितराग को जगत दृष्टि जीव पहचान नहीं सकता। अंधकार में चीज पड़ी है तो देखी नहीं जाती, प्रकाश चाहिए इसके लिए। चक्षु है, चीज भी है, लेकिन बिना प्रकाश दिखती नहीं है। ऐसे जीव को ज्ञान भी है, सामने ज्ञानी भी है, लेकिन देखने का प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश होना चाहिए, जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वो नहीं है। जैसे अंधकार में पड़े हुए पदार्थ को मनुष्य चक्षु से देखने के लिए किसी दूसरे प्रकार की अपेक्षा, दूसरे प्रकाश की अपेक्षा रहती है, प्रकाश बिना देखा नहीं जाएगा, वैसे जगत दृष्टि जीवों को ज्ञानी या वितराग की पहचान के लिए विशेष शुभ संस्कार और सत्समागम की अपेक्षा होना योग्य है। ये इनके लिए प्रकाश है। सत्समागम से मालूम पड़ सकता है कि ज्ञानी कैसे होते हैं, और वो भी मालूम जड़ पड़ सकता है कि कुछ ऐसी योग्यता आती है तब, और वो योग्यता का वर्णन किया कि दृढ़ मुमुक्षुता होने पर और सत्समागम में प्राप्त उपदेश का अवधारण करने पर और अंतरात्म वृत्ति का परिणमन होने पर, ये सब संस्कार की बात चली। यदि वह युग प्राप्त न हो तो जैसे अंधकार में रहा हुआ पदार्थ और अंधकार, ये दोनों एकाकार भासित होते हैं, अंधकार और पदार्थ में कोई अंतर नहीं दिखता, एक सा ही दिखता है, भेद भासित नहीं होता, वैसे तथारूप योग के बिना ज्ञानिया वितराग और अन्य संसारी जीवों की एकाकारता भासित होती है। जैसे दूसरे जगत के लोग दिखते हैं वैसे ज्ञानी दिखते हैं, कोई फर्क नहीं दिखता, वो भी सामान्य मनुष्य जैसा ही ज्ञानी दिखता है। सत्समागम का योग हो और कुछ योग्यता पहचानने की हो तभी वो अंतर मालूम पड़ता है। देहादि चेष्टा से प्राय भेद भाषित नहीं होता, शरीर कपड़े खान पीन रहने की सब सामान्य मनुष्य जैसे होती है। एक ही चौके में बनता है सब रसोई, दूसरे घर वाले जो खाते हैं वही वो खाते हैं, इनके लिए कोई स्पेशल आइटम बनती होगी क्या है? वो तो वो नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं। तो दिया चक्रवर्ती का आहार कैसा होता है, चक्रवर्ती का आहार ऐसा होता है कि जिसमें हीरे की भस्म होती है, मोती की भस्म होती है, बहुत कीमती कीमती चीज़ होती है इसमें। ખોરાક ઉપરથી તો ન ખબર પડે ને, કે ભાઈ જ્ઞાની હોય આટલી રોટલી ખાય ને અજ્ઞાની હોય આટલી રોટલી ખાય, એવું કહેવાય હે? એવું કઈ નહીં ને, ભાઈ ખીચડીમાં ઘી નથી લેતા એવું કઈ છે? એવું કઈ નથી, એનું કારણ છે કે બાહ્ય સંયોગ જ્ઞાની અજ્ઞાનીના એક સરખા હોવાનું કારણ છે, કે અજ્ઞાન દશામાં બાંધેલા કર્મનો ઉદય જ્ઞાન દશામાં આવે છે, અને બીજા સંસારી જીવોને પણ અજ્ઞાન દશામાં બાંધેલા કર્મનો જ ઉદય આવે છે, તો બંનેને જ્ઞાનીને કે અજ્ઞાનીને તો કર્મનો ઉદય તો અજ્ઞાન દશામાં જે બાંધેલા કર્મ છે એનો જ આવવાનો, એટલે સરખો ઉદય હશે, ઉદયમાં કાંઈ ફેર નહીં હોય। ત્યારે ઉદયમાં કાંઈ ફેર નથી પડતો તો ઉદયથી કેવી રીતે સમજશો? કે ઉદયથી કાંઈ નહીં સમજાય, તો એનું લક્ષ્ય સમજવું, એની વૃત્તિ સમજવી, એનું નિરસપણું સમજવું, એ તો એને એના અંદરના પરિણામો પકડાય ત્યારે ને, અંદરના પરિણામો પકડવાની શક્તિ હોય એવા જીવને ખબર પડે ને, બીજાને કેવી રીતે ખબર પડે? લેકિન કિસકા અવલંબન છે? કે લોકો કો અવલંબન છે, લોકો કી દ્રષ્ટિ કા અવલંબન લિયા, લોક ક્યા કહેંગે? તો લોકો કહેને નહીં કહેને છે કોઈ ધર્મ હોતા હૈ ક્યા? લોકો કો કહેને નહીં કહેને સે ક્યા ફરક પડતા હૈ? દૂસરે કે કહેને સે નહીં કહેને સે ક્યા ફરક પડતા હૈ? હમારે પરિણમન સે હમારા લાભ નુકસાન હૈ, દૂસરે કો કહેને સે થોડા હમારા લાભ નુકસાન હોતા હૈ, યે બાત હૈ। ઠીક, નહીં કરે તો અચ્છી બાત હૈ, જીતના ભી નિર્દોષ વ્યવહાર હો એસા વિકલ્પ સહેજ રહા કરેગા, ઓર ઇસ વિકલ્પ કે અનુસાર પ્રવૃત્તિ રહેતી હો તો ઠીક હૈ, લેકિન ઇસસે કોઈ જ્ઞાની અજ્ઞાની કા માર્ગ થોડે નિકલતા હૈ। યે તો અજ્ઞાની ભી એસે કર સકતે હૈ, જ્ઞાની ભી એસે કર સકતે હૈ। વજન ચલા જાયગા તો આત્મા ઉપર વજન નહીં રહેગા, પકડ હો જાય તો આત્મા કી પકડ છૂટ જાયગી, પર પદાર્થ કી પકડ મેં આત્મા કી પકડ છૂટ જાયગી, દો પકડ સાથ મેં નહીં રહેતી, આત્મા કી પકડ રખની હૈ યા પરમાણુ કે યા દૂસરે જીવ કે પર્યાય કી પકડ રખની હૈ? ક્રિયા કે પકડ હોગી તો પરિણામ બિગડેંગે, પરિણામ કી પકડ હોગી તો પરિણામ સ્વસ્થ રખને કે લિયે જો ભી જૈસા ભી હો ચલા લેંગે સરળતા સે। સરળતા વો હૈ કે હમારે હમ કે રહેંગે કે હમકો યે આઇટમ નહીં ચલેગી, તો અગલે કો પરિશ્રમ બઢેગા કે નહીં બઢેગા, તો ઇસમાં હમારી સરળતા કહાં રહી? કોઈ ભી ચીજ ઉદ્ગલાત્મક હૈ, ઉદ્ગલ કે પરમાણુ જો ભી થાલી મેં આયે ઉસમે ઇષ્ટ અનિષ્ટ હમ ક્યો કરતે હૈ, ક્યો કરના ચાહિયે? ઉદ્ગલ હી ઉદ્ગલ હૈ સબ, થોડા પેટ મેં ડાલ દો બાત ખતમ, ઉસમે ચિકચિક કરને કી જરૂરત ક્યા હૈ? યે ઠીક હૈ, યે ઠીક નહીં હૈ, ચલેગા નહીં ચલેગા, ક્યા જરૂરત હૈ? અભક્ષ હૈ તો ઉસમે તો કહે સકતે કે ભાઈ યે એસા હમ ચાહતે નહીં હૈ।
કેસા આ જાય किसमें? किसी में भी बेकिंग पाउडर यूज होता है या सोडा यूज होता है तो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन होता है तो जीप की उत्पत्ति होती है, जीप की उत्पत्ति होती है तो बाबा अच्छा कोई भी आइटम नहीं है, फ्राई में आजकल यूज होता है लेकिन
नहीं अच्छा रोटी दाल भात साथ में होता है ऐसा तो फिर
किसी के यहाँ गए और वो बना नहीं हो इस तरह का कुछ सिचुएशन हो
सामान्य तौर से तो लोग पूछ लेते भाई क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे।
अभी जैसे मेरे साथ ही इंस्टेंस बना, जैसे खाना खाने का बना तो बुलाए खाना खाने हम गए तो हर चीज में जमीकंद था तो जमीकंद को लेना नहीं था तो मेरे वो हम खाते नहीं है, आपका खाना का कुछ बचा हुआ हो तो वो दे दो वो हम खा लेंगे
छोड़ दें।
तो वो है फिर उसके बाद में एक आइटम था उसमें जैसे नान रहा और जैसे पनीर का साग था तो पनीर का साग में वो और कुछ अवक्ष में नहीं था परंतु नान अपने अपने अवक्ष है, एक तो मक्खन का प्रयोग है दूसरा बेकिंग पाउडर का प्रयोग है तो अवक्ष हो गया हमारे पास उसका कोई नियम नहीं है क्योंकि हम ब्रेड बिस्किट सब खाते हैं तो वो खा लिए हम।
ठीक है ऐसा करना चाहिए ऐसा बनता है बाहर खाना खाने में वो जमीन कंद का प्रयोग होता है आजकल ज़्यादा आलू प्याज वगैरह का लहसुन वगैरह गाजर वगैरह का तो वो छोड़ देना बाकी के आइटम खा लेना कहीं नहीं हो तो दाल भात में तो कुछ होता ही नहीं,
अभी ऐसा बना था, सब आइटम में था।
चावल में चावल और दाल में तो कुछ होता नहीं तो फिर उसमें थोड़ी तकलीफ पड़ती है नहीं खाना चाहिए जितना हो सके उतना
अवॉइड
करें, नुकसान तो लाभ नुकसान तो हमारे परिणाम से होगा परिणाम का ख्याल रखना है।
परिणाम में विकृति नहीं आया पर खाने में आया उसमें कोई प्रकार का नुकसान
हुआ? नुकसान तो परिणाम से होता है, नुकसान जो होता है वो परिणाम से
हमारा परिणाम हम जानते हैं हमारा कोई आग्रह भी नहीं है पर ऐसे दूसरे जैसे कोई दिगंबर समाज में हम जाते हैं तो वहाँ पर आप राष्ट्र को भोजन करें हमारा कोई आग्रह नहीं, हम जानते हैं कि इसका कोई हमको आग्रह उचित भी नहीं है इस समय में पर उस माहौल में अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या वो लोक दृष्टि होगा हमारे लिए?
ऐसा नहीं लेना अच्छा ही है, नहीं लेना वो अच्छा ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लोक दृष्टि का सवाल नहीं है, नहीं लेना वो एक विवेक है। वो तो है
किस आधार से हमने रात में नहीं खाया,
किस
किस आधार को पकड़ के हमने रात में खाया
है, किस आशय हमारा क्या है उस पर तो लेकिन ऐसा दृष्टिकोण नहीं रख करके ऐसा दृष्टिकोण रखे कि जितनी निर्दोषता रहे व्यवहार में उतनी अच्छी ही है ऐसा दृष्टिकोण रख ले। बस बात तो वो कि वो बने लेकिन परिणाम आपका क्या है, परिणाम बंश है, कृपाल रुद्र ने क्या लिखा क्रिया वो कर्म है, वो तो क्रिया एक कार्य है, कर्म मैंने ओरिएंटेड पोजीशन है, क्रिया वो कर्म है, उपयोग वो धर्म है, आपका शुद्धोपयोग है तो धर्म है, अशुद्ध उपयोग है तो अधर्म है, पर परिणाम बंध है, आपका जैसा परिणाम है वैसा बंध होगा, तो परिणाम का ख्याल रखना है, क्रिया तो क्रिया है परिणाम परिणाम है, कौन सा परिणाम है उस पर सब आधार है, वही क्रिया में परिणाम अलग होता है, वही क्रिया में परिणाम अलग होता है, बन तो परिणाम अनुसार होगा क्रिया अनुसार नहीं होगा।
किसी ना किसी
वो भी हो सकता है, हो सकता है,
हो सकता है।
पहले से ही सत्संग में सब बात की विचारणा करके अपना परिणाम किस हालत में किस प्रसंग में कैसा होना चाहिए सबको बात समझदारी की बनती है तो ऐसे जैसे हमारी समझ है वैसा परिणाम आएगा, सीधी सादी बात है।
ज्ञानी को ऐसे विषय में कुछ पकड़ नहीं होती है?
नहीं, एक तो होता है
विषय में परेशानी सारी होती है,
परेशानी वो सारे होते हैं, और दूसरा क्या कहेगा क्या लगेगा वो बात वो मान सम्मान के मुख्य नहीं करते हमेशा, वो बात जरूर है। ज्ञानी
नहीं होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए, ज्ञानी ज्ञान में चलते हैं, फिर जिसको जिस जैसा ठीक लगे वैसा माने, नहीं माने उनको कोई लेना देना है नहीं किसी के साथ। नहीं रखना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कषायों से रहित हुए हैं, उन देहधारी महात्मा को त्रिकाल परम भक्ति से नमस्कार हो, नमस्कार हो। जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कषाय से रहित हुए हैं, देहधारी होते हुए भी अरिहंत अवस्था में ऐसा होता है, उन देहधारी महात्मा को त्रिकाल परम भक्ति से नमस्कार हो, नमस्कार हो। वे महात्मा जहाँ रहते हैं उस देह को, जहाँ रहते हैं उस भूमि को, उस घर को, जहाँ चलते हैं उस मार्ग को, अरे मार्ग में रही हुई धूली को, सब बात आती है उसमें, उस आसन आदि जहाँ बैठते हो, जहाँ सोते हो आदि सबको नमस्कार हो, नमस्कार हो। वो जो है इनके प्रति भक्ति का विषय है, आसन जड़ पदार्थ को भी नमस्कार किया। गुरुदेव तो सम्यक दर्शन की महिमा उतनी करते थे कि सम्यक दृष्टि कोई बैल होता है जो गाड़ा खींचता है ना, वो बैल होता है सम्यक दृष्टि, उसके पग के नाखून, पैर के नाखून खरी बोलते हैं गुजराती में उसको, पैर के नाखून को क्या बोलते हैं, खरी। अगर किसी विष्टा को छू गई चलते चलते वो विष्टा धन्य हो गई। क्या सम्यक दर्शन की महिमा करते थे वो, सम्यक दर्शन की क्या महिमा करते थे, कितनी महिमा करते थे। तो वो बात अलग है, उसको ये गुण समझ में आता है कि जिस गुण से जीव का आनंद संसार का नाश हो जाता है और परमानंद की प्राप्ति में अनंत काल वो विराजमान रह जाता है, इस गुण का मूल्यांकन कैसे करे, ये सब मूल्यांकन करने की बात है। कैसे कैसे मूल्यांकन करते थे, श्री डूंगर आदि सर्व मुमुक्षु जन को यथा योग्य, ये 674 पूरा हुआ, अब कौन सा लेना है विचार किया हो तो बता दें। कोई सुबह आता है, अभी नहीं आता है, सब लिंक टूट जाता है, सुबह का सुबह रखें।
अभी कोई और आपको विशेष खास
दृष्टि में बड़ा भेद है, भेद माने अंतर है। लौकिक दृष्टि और अलौकिक दृष्टि में बड़ा अंतर है। लौकिक दृष्टि में व्यवहार की मुख्यता है और अलौकिक दृष्टि में परमार्थ की मुख्यता है। देखो अभी थोड़ी चर्चा चल गई ना, इसका उत्तर आ गया। लौकिक दृष्टि में व्यवहार की मुख्यता है और अलौकिक दृष्टि में परमार्थ माने आत्मकल्याण की मुख्यता है। हाँ, हमारा आत्मकल्याण हुआ कि अकल्याण हुआ, बस वही देखना है। लौकिक दृष्टि से हमें कुछ नहीं सोचना है, हमको तो हमारे आत्मकल्याण और अकल्याण से निस्बत है, प्रयोजन है, उतना ही हमें सोचना है। ये दृष्टि रखना चाहिए। बस वही करना है, और हमारा अकल्याण हो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, बात खत्म।
मतलब वर्तमान में कोई भी उधर आए तो उसमें क्या डिसीजन लेके हमारे भाव अभिभूत होंगे और किससे तिरोभूत होंगे, उसको बताएं।
लौकिक दृष्टि से ठीक भी नहीं लगे,
लौकिक दृष्टि से हाँ भले ठीक लगे नहीं लगे कोई जरूरी नहीं है। अगर परमार्थ दृष्टि की पकड़ रही तो दूसरा कोई विकल्प करने योग्य नहीं है, और सब विकल्प छोड़ दें। ये सीधी शादी एक बात पकड़ में रह गई तो कोई आपत्ति नहीं है। अंतरंग विवेक में बाह्य विवेक समाविष्ट है। कभी कोई उत्पटांग परिस्थिति देखने में आए तो उसका विकल्प उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कोई प्रसंग में चित्र विचित्रता देखने में आ जाएगी तो उसका विकल्प नहीं करने का, सिर्फ अपने अलौकिक दृष्टि से ही सब बात को विचार करना है। जैन और दूसरे सब मार्गों में मनुष्य देह की विशेषता एवं अमूल्यता कही है, वह सत्य है, परंतु यदि उसे मोक्ष साधन बनाया जा सके तो ही उसकी विशेषता एवं अमूल्यता है। मनुष्य देह मैंने मनुष्य पर्याय जो है उसकी विशेषता इसलिए है कि परमार्थ की प्राप्ति का मौका ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्याय में बनता है। उपादान में भी इस प्रकार की योग्यता विशेष रूप से रहती है और निमित्तों का भी वहाँ बनना विशेष रूप संभव है, इसलिए मनुष्य देह के मूल्य विशेष रूप से जैन में भी गिना गया है और वो बात अन्य मतों ने भी स्वीकार कर ली है कि बात तो सही है, उसमें कोई मतांतर नहीं है। मनुष्य आदि वंश की वृद्धि करना यह विचार लौकिक दृष्टि का है, परंतु मनुष्य को यथार्थ योग होने पर कल्याण का अवश्य निश्चय करना तथा प्राप्ति करना यह विचार अलौकिक दृष्टि का है। मनुष्य आदि वंश की वृद्धि करना ये अन्य मत में है, तो वो लोग क्या है कि वंश चालू रहना चाहिए वो मानते हैं, इसलिए शादी करना चाहिए और पुत्रादि होना चाहिए और उसका वंश की परंपरा चलनी चाहिए, तो उस तरह से वो लौकिक दृष्टि से देखते हैं। अलौकिक दृष्टि से वो बात नहीं है, ये लौकिक दृष्टि का विचार है। परंतु मनुष्य को यथार्थ योग होने पर कल्याण का अवश्य निश्चय करना, सत्पुरुष आदि का सत्संग का योग बनने पर आत्मकल्याण का विचार करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए तथा प्राप्ति करना और आत्मकल्याण की प्राप्ति करना यह विचार अलौकिक दृष्टि का है। हाँ, आत्मकल्याण का निश्चय अवश्य करना, निश्चय किए बिना प्राप्ति कैसे होगी? कोई भी कार्य का एग्जीक्यूशन है वो इसके डिसीशन के बिना कैसे हो सकता है, विदाउट डिसीशन कैसे होता है? निश्चय हुए डिसीशन लेने की बात है और प्राप्ति होना वो कार्यान्वित होने की बात होती है। दोनों होना चाहिए। हाँ, ये दोनों होना जरूरी है।
निश्चय होगा तो प्राप्ति होगी और प्राप्ति हाँ,
ये तो ये है, कोई डिसीजन के विषय में गलत फहमी भी रह सकती है। जब गलत फहमी रहती है कि हमारा निश्चय तो है, हमारा अभिप्राय तो है, इसकी आड़ में कोई गड़बड़ कर लेता है, परंतु ऐसा वो ऐसा भी बनता है, तो कहने निश्चय और प्राप्ति दोनों होना जरूरी है। निश्चय से ही होता है तो प्राप्ति होती ही है, ऐसा। हाँ, वो छल है, छल नहीं होना चाहिए। परवशता से कोई बात हो जाए अलग है, अपना प्रयास तो ऑनेस्टली प्रामाणिकता से होनी चाहिए। जो है वो पुत्र और पुत्र के विषय में चर्चा किया है, खास करके अन्य मत का जो विचारधारा है उस विषय में कृपालु देव ने अपना विचार प्रदर्शित किए हैं जैन दर्शन के सिद्धांत के अनुसार। यदि ऐसा ही निश्चय किया गया हो कि क्रम से ही सर्वसंग परित्याग करना, तो वो यथास्थित विचार नहीं कहा जा सकता। क्या वहाँ चार आश्रम है अन्य मत में, 25 साल तक, 100 साल की आयु गिनते हैं, 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल तक गृहस्थाश्रम, फिर 50 से 75 साल तक वानप्रस्थाश्रम, और फिर संन्यास आश्रम, संन्यास मैंने त्याग करना, तो त्याग आखिर में करना, तो वो यथातथ्य विचार नहीं है, क्योंकि आयु का भरोसा नहीं है। और आज संन्यास लेकर के त्यागी होकर के अगर लाभ होता है तो कल पर क्यों रखे, उसमें कौन सा विवेक है, ये कोई विवेक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ छोटी उम्र में भी त्यागी देखे जाते हैं, ज्ञानी देखे जाते हैं। त्यागी या ज्ञानी होने में उम्र का कोई कायदा लागू करना नहीं चाहिए, ये लौकिक दृष्टि है। उम्र देखना वो लौकिक दृष्टि है, अरे इतनी छोटी उम्र है आप धर्म की बात करते हो, ये तो बुढ़ापे में होना चाहिए, ये लौकिक दृष्टि है। अलौकिक दृष्टि में तो आज जो लाभ परमार्थ का, आत्मकल्याण का होता है, तो किसी को कल करना ये विवेक संपन्न बात नहीं है, उसमें विवेक नहीं है, यथार्थ नहीं है। हाँ, 8 साल की उम्र में जीव विवेक करता है तो सिद्ध पद को प्राप्त हो सकता है। 8 साल की उम्र में नया सम्यक दर्शन हो गए, मुनि दशा है, केवल ज्ञान हो गए, और आयु पूरा हो तो सिद्ध पद भी हो जाए, 8 साल में वो अधिकार प्राप्त होता है। तो 8 साल से जितना लेट हुआ है उतना लेट समझना। या एक जमाना ऐसा भी था चतुर्थ काल में कि जिसके घर में बालक का जन्म होता है उसके पालने में भी ये पालना में झुलाते झुलाते माँ अगर सम्यक दृष्टि होती है, उस जमाने में होती भी थी, तो उनको संस्कार वो देते हैं कि देख बेटा तू आत्मा है, क्या शुद्धोसी बुद्धोसी, तो शुद्ध है, तो ज्ञान स्वरूप है। ये पालना में वो संस्कार मिलता था जीव को, बच्चे को ये संस्कार मिलता था। आजकल दूसरी बात है, एक जमाना ऐसा भी था और ऐसा जरूरी भी है, अपने गुजराती में गलथूथी में संस्कार मिलवा जो ये आत्मा ना, सो गलथूथी क्या, गलथूथी समझते हैं, बच्चा जन्म होता है ना उसको बिंदु देते हैं ना, पानी के बिंदु देते हैं, कौन से पानी, कौन, हाँ किसान पानी आपे से, हाँ गोल नु पानी आपे, गुड़ का पानी देते हैं, बूंद छोटे छोटे बूंद देते हैं पानी के, तो वो गोल के पानी नहीं देना, उसको आत्मा का संस्कार देना, उसी वक्त पहले आत्मा का संस्कार देना चाहिए। हमको ये विचार आया था कि ये तो गलतूत में मिलना चाहिए था, अन्य मत में जन्म हुआ है इसका मतलब कुछ अपराध करके आया अन्य मत में, वरना जैन मत में तो ये संस्कार मिल सकता है जो कि आजकल नहीं मिलता है, लेकिन ये मिलना चाहिए। क्यों देरी इतनी, जन्मते ही आत्मा का संस्कार मिलना चाहिए, देरी क्यों उसमें? सीधी बात है, इसलिए कोई विशिष्ट प्रकार का पुण्य होता है तो ऐसे फैमिली में जीव का जन्म होता है, इस प्रकार का योग होता है तो, और योग्यता होती है तो परमार्थ की लाइन मिल जाती है, परमार्थ का मार्ग मिल जाता है। यदि ऐसा ही निश्चय किया गया हो कि क्रम से ही सर्वसंग परित्याग करना, तो यह यथास्थित विचार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्व काल में कल्याण का आराधन किया है। ऐसे कई उत्तम जीव लघु वैसे ही उत्कृष्ट त्याग को प्राप्त हुए हैं। पूर्व भूमि में आराधन किया हो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जिसका जन्म हुआ हो, तो बहुत लघु वय में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लघु वय में ही वो दीक्षा धारण करके मुनि दशा को भी प्राप्त करते हैं, उत्कृष्ट वितरागता को भी प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं लघु वय में, तो अच्छा ही है। उसमें क्या नुकसान है उसमें? इसके दृष्टांत रूप सुखदेव जी, जड़ भरत आदि के प्रसंग अन्य दर्शन में भी है। जिन दर्शन में वो आश्रम का कायदा है वहाँ भी वो बना है, वहाँ भी कहीं महात्मा है छोटी वय में त्यागी दिखे जाते हैं। यदि ऐसा ही नियम बनाया हो कि गृहस्थाश्रम का आराधन किए बिना त्याग होता ही नहीं, तो फिर वैसे परम उदासीन पुरुष को त्याग का नाश कराकर काम भोग में प्रेरित करने जैसा उपदेश कहा जाए और मोक्ष साधन करने रूप जो मनुष्य भव की उत्तमता थी उसे दूर कर साधन प्राप्त होने पर संसार साधन का हेतु किया, ऐसा कहा जाए तो वो तो अविवेक है, उसमें कोई विवेक नहीं है। क्योंकि आज उत्तम कोटि के परिणाम है उनको छोड़ दो, वो कल करेंगे। ना आयु का भरोसा है और ना परिणाम का भी, तो वो कोई विवेक वाली बात नहीं है। और एकांत से ऐसा नियम बनाया हो कि ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम आदि का क्रम से इतने इतने वर्ष तक सेवन करने के पश्चात त्यागी होना, तो वह भी स्वतंत्र बात तो नहीं है, क्योंकि आयु का तो कोई भरोसा है ही नहीं। किसके भरोसे से ये काम होगा? तथारूप आयु न हो तो त्याग का अवसर ही न आए, उत्तम बात हो तो रह जाएगी। और यदि अपुत्र रूप से त्याग न किया जाए ऐसा माने, तो किसी को वृद्धावस्था तक भी पुत्र नहीं होता, इसके लिए क्या क्या समझना है? वहां क्या एक सूत्र बनाया है, अपुत्रस्य गतिर नास्ति। अपुत्र को अपुत्रवान जो होता है पांजियापण देने के, यानी गति सारी नहीं थती, एम ए लोगों में सिद्धांत है, खोटो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बराबर नहीं। जारे पण जीवना परिणाम निर्मल थाय त्यारे संसार छोड़ीने, गृहस्थाश्रम छोड़ीने, घर छोड़ीने पोतानुं आत्मकल्याण करवा साधी चाली निकले, यथार्थ छे। जैन मार्ग का भी ऐसा एकांत सिद्धांत नहीं है, जैन मार्ग में कोई ऐसा एकांत सिद्धांत है ही नहीं कि चाहे जिस अवस्था में चाहे जैसा मनुष्य त्याग करे। हाँ, एकांत त्याग की मुख्यता अवश्य है जैन मार्ग में, लेकिन बिना विवेक त्याग करने की बात नहीं है, योग्यता संपन्न होने से त्याग बताया है वहाँ भी। तथारूप सत्संग और सद्गुरु का योग होने पर विशेष वैराग्यवान पुरुष सत्पुरुष के आश्रय से लघु वय में त्याग करे तो इससे उसे वैसा करना योग्य नहीं था, ऐसा जिन सिद्धांत नहीं है, ऐसा जिन सिद्धांत नहीं है वो त्याग को लघु वय में भी सम्मत करता है। कितना शर्त लिया, तथारूप यानी यथार्थ सत्संग और ज्ञानी सद्गुरु का योग होने पर विशेष वैराग्यवान वैराग्य संपन्न होने पर वो भी सत्पुरुष के आश्रय से, मैंने उसकी आज्ञा के अनुसार स्वच्छंद रूप से नहीं लघु वय में त्याग करें तो इससे उसे वैसा त्याग करना योग्य नहीं था, ऐसा जिन सिद्धांत नहीं है। मतलब ऐसा जिन सिद्धांत है कि ऐसा अगर कोई योग बनता है तो वो यथार्थ है, लघु वय में भी त्याग करना चाहिए, तो हमारे यहाँ भी चलता है। कोई छोटी उम्र में धर्म के मार्ग में ज़्यादा रस लेते हैं तो घर वाले बोलते हैं कभी तुम्हारा उम्र कितना हुआ, इस उम्र में ऐसा किया जा सकता है क्या, ये बात सही नहीं, ये लौकिक दृष्टि है। अलौकिक दृष्टि में तो आत्मकल्याण जितना जल्द होवे उतना अच्छा ही है, उसमें देरी करने का कहीं भी उद्देश्य नहीं है। अच्छा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, निरस्ता आनी ही चाहिए, कोई जरूरी नहीं है रस रह जाए और नियम ले तो क्या फायदा है। निरस्ता होनी चाहिए, इसलिए कृपालु देव ने 172 नंबर के पत्र में एक वचन लिखा है कि उदासीनता का क्रम सेवन करना, उदासीनता के क्रम का सेवन करना, ऐसा लिखा है। तो ये जो मुमुक्षुता का प्रारंभ है वही उदासीनता से ही चालू होता है। सबसे पहले भरो भ्रमण की चिंता होती है तो वर्तमान उदय में से परिणाम जो है निरस हो जाता है, यहाँ से उदासीनता शुरू होती है, क्रम में ही उदासीनता पहली आती है, फिर जीव आगे बढ़ता है तो उसको जब अपने मूल स्वरूप की खोज चलती है कि मेरा आत्मस्वरूप कैसा, जिसके अवलंबन से साधक दशा और सिद्ध दशा रहती है, ऐसा कोई महान तत्व मेरा स्वरूप है तो मूल में कैसा है, इसकी अपूर्व जिज्ञासा में और उदासीनता आ जाती है और उसका अवलोकन चलता है और उसको भावभाषण होता है कि मेरा स्वरूप तो निरालंब निरपेक्ष है, सर्व से सर्वथा भिन्न है और निरालंब निरपेक्ष है, परिपूर्ण है, इसलिए किसी की अपेक्षा मुझे नहीं है, तो और उदासीनता आती है। पर अनुभव में तो आत्मरस ही उतना जमता है कि आत्मरस के आगे बाह्य पुद्गल के रस शिथिल हो ही जाते हैं। तो उदासीनता का जो क्रम है वो तो मार्ग में तो है ही, बढ़ता बढ़ती उदासीनता बढ़ती ही जाती है। इसलिए वैसा करना योग्य नहीं था, ऐसा जिन सिद्धांत नहीं है, परंतु वैसा करना योग्य है ऐसा जिन सिद्धांत है, क्योंकि अपूर्व साधनों के प्राप्त होने पर भोगादि साधन भोगने के विचार में पड़ना और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करके उसे अमुक वर्ष तक भोगना ही, यह तो जिस मोक्ष साधन से मनुष्य भव की उत्तमता थी उसे दूर कर पशुवध करने जैसा होता है। देखो क्या बोल दिया, पशु की उपमा दे दिया मैंने, अविवेक है। जैसे पशु में विवेक नहीं होता वैसे मनुष्य होकर भी विवेक नहीं रहा, ये बात हो गई। कल्याण के अवसर को दूर धकेलना ये तो अविवेक है, वो तो जितना हो सके उतना शीघ्र होना ही अच्छा है। और कल्याण में तो क्या है कि आत्मकल्याण के मार्ग में और आत्मकल्याण होने में जीव को सुख मिलता है, तो उसका सीधा साधा अर्थ घटन है कि आज तो भले ही दुख होवे कल सुख लेना, ये बात कोई मंजूर करता है क्या कि आज तो हमको दुख भोगना है कल भले हम सुखी हो जाए, सुख की बात कल रखो। ये बात जैसे सामान्य बुद्धि से भी सम्मत नहीं होती है, ऐसे सामान्य बुद्धि से भी सम्मत नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्य धर्म में अन्य मार्ग में अवांतर हेतु से ऐसा सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। अवांतर मैंने दूसरा हेतु से, आत्मकल्याण का हेतु से नहीं, लौकिक दृष्टि से ऐसा। अन्य मत में देखिए, खास करके हिंदू धर्म बड़ा हिंदुस्तान में ज़्यादा फैला हुआ है, जैन के बराबरी में जैनों कम है। तो वो लोग ने धर्म के बहाने कई प्रकार के नियम रख दिए, गृहस्थों में नियम रखे गए हैं, उसमें लौकिक दृष्टि है और उसमें आर्थिक दृष्टिकोण भी ब्राह्मणों का है। अब देखिए वहाँ कोई भी प्रसंग है ब्राह्मण को बुलाओ, शादी है तो ब्राह्मण को बुलाओ, कोई मर गया है तो ब्राह्मण को बुलाओ, लड़का का जन्म हुआ तो ब्राह्मण को बुलाओ, कोई भी हो उनको बुला लो। क्यों, उन लोगों ने अवांतर हेतु से मैंने आर्थिक दृष्टिकोण से ये सब बात धर्म के नाम पे घुसा दी। तो अन्य मत में जो धर्म के सिद्धांत है वो अवांतर हेतु से है, आत्मकल्याण के हेतु से नहीं है, अन्य हेतु से है। देखो सामने के पेज पर एक बात है 703 में, जहाँ तक हो सके वहाँ तक, नीचे ये सामने वाला पेज 521 है ना, 520 वाला, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ज्ञानी पुरुष के वचनों का लौकिक आशय में न लेना, ज्ञानी पुरुष के वचनों को लौकिक आशय में न लेना, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने अलौकिक आशय से तो वचन प्रकाशित किए हैं, उनको लौकिक दृष्टि से लौकिक आशय से विचार करना नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सके मतलब क्या है कि पूरा पूरा, जहाँ तक हो सके मैंने अधूरा नहीं, पूरा का पूरा। हाँ, कोई बोलने की पद्धति है, गुजराती में कई प्रकार के ऐसे शब्द हैं, बनी सके त्या सुधी आम करूँ, बनी सके त्या सुधी એટલે પૂરા પ્રયત્ન થી એમ કરું, એમ છે યથાશક્તિ। હા, યથાશક્તિ એક એવા ભી શબ્દ પ્રયોગ હે, ગમે તેમ કરીને આમ કરતું, ગમે તેમ કરીને એટલે ક્રમ છોડીને આડોઅવળું કરીને અવિવેક કરીને એમ નહીં, ગમે તેમ કરીને એટલે યથાર્થ રીતે પૂરી શક્તિથી એમ કહેવું છે, પણ બોલવામાં એવો શબ્દ વપરાય છે। चाहे जैसा करो, चाहे जैसा मतलब मनमानी करो, स्वच्छंद करो, वो बात नहीं है, वहाँ सादा अर्थ ऐसा होता है, चाहे जैसा मैंने स्वच्छंद से भी करो, मनमानी करो, ऐसा नहीं, चाहे जैसा मैंने यथार्थ रूप से ऐसा ही करो, ऐसा है। अथवा अलौकिक दृष्टि से विचारना योग्य है, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक लौकिक प्रश्नोत्तर में भी विशेष उपकार के बिने पढ़ना योग्य नहीं है। तत्व चर्चा चलती हो वहां लौकिक प्रश्नोत्तर में नहीं पढ़ना, लौकिक बात को बच में नहीं ले आना, लोग में ऐसा है वो लोग मेरे लोग में जैसा हो वैसा हो। आत्म कल्याण और अकल्याण का विषय को देखो ना। नीच का, नीच का ही लेना, दूसरे को अपने क्या लेना देना है। विकल्प आ जाता है तो थोड़ा उसको शांत करो। अन्य का विकल्प आता है उस वक्त अपना विकल्प तो छूट जाता है कि नहीं छूटता है? नहीं छूटता है तो अच्छी बात है।
अपना रहता तभी तो दूसरों के लिए आता है, नहीं तो
क्या है? नहीं, अपना रहना वो जरूरी है और वो मुख्य होना चाहिए। फिर अन्य का आओ तो आओ, नहीं आओ तो नहीं आओ, जरूरी नहीं है कि आना ही चाहिए, वो जरूरी नहीं है। अपनी मुख्यता होनी चाहिए। फिर दूसरा का आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं, ऐसा रखना गौण रूप से। इस तरह से परलक्षीपना नहीं होता है, अपने को छोड़कर होता है तो परलक्षीपना होता है। वैसे प्रसंगों से कई बार परमार्थ दृष्टि को क्या लौकिक प्रश्नोत्तर में पढ़ने से कई बार परमार्थ दृष्टि को क्षुब्ध करने जैसा परिणाम आता है। परमार्थ दृष्टि क्षुब्ध का क्या गुजराती क्या लिखा है? क्षोभ, क्षोभ, परमार्थ दृष्टि हिल जाए, हाँ ऐसा प्रसंग हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लौकिक दृष्टि से धर्म के सिद्धांत को विचार करने पर जो अलौकिक दृष्टि आत्मकल्याण की दृष्टि है वो गौण हो जाती है, और लौकिक दृष्टि के जो प्रसंग होते हैं इसकी चर्चा और परिचर्चा में इसका रस ज़्यादा हो जाता है। इस चर्चा को क्यों लंबाते हैं, लौकिक दृष्टिकोण को क्यों लंबाते हैं कि उसमें रस आया इसलिए, तो जितना वो रस आएगा उतना परमार्थ को हानि होगी, तो नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक रख
तो।